नमस्कार। ब्रह्मा कुमारी इसके फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर यह हमारी लाइव पेशकश भी द चेंज सीरीज है। मैं हूं आपका दोस्त आदेश टंडी और पिछले 20-25 दिनों से हम आपके साथ कोशिश यही कर रहे हैं, इस बदलते दौर में हम आपके लिए बदलाव को अपने जीवन में आसानी से असिमुलेट करने की कोशिशों में मददगार बने। हम में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छी कोशिशें कर रहे हैं और इन कोशिशों में हम सभी साथ हैं, ये बात आपको जानने को मिलता है तो बदलाव करना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर हम बदलाव नहीं भी कर पाते तो ये जान लेना कि हमारे लिए दोस्त हैं, हमारे लिए हमारी बातें सुनने वाले लोग हैं, हमारे लिए ऐसे लोग हैं जो सेल्फलेस होकर बायस न हुए बगैर सेल्फलेस एडवाइस दे सकते हैं, तो ये जानकर हमें चीजें करना आसान लग सकता है। ब्रह्मा कुमारी की ये छोटी सी पेशकश यही रही है कि हम आपके घरों तक पहुंचे। अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं, या फिर आपको किसी प्रकार के इमोशनल सपोर्ट की या फिर स्पिरिचुअल गाइडेंस की आवश्यकता है तो वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले इन प्रयासों में ब्रह्मा कुमारी के दिग्गज मास्टर्स ऑफ मेडिटेशन हर दिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके जीवन के अनुभवों से हम सबको लाभान्वित कर रहे हैं और हमारे प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं। आज हमारे मास्टर ऑफ मेडिटेशन ब्रह्मा कुमार अमीचंद भाई जी हैं, जो ब्रह्मा कुमारी के पंजाब जोन के निदेशक हैं। आज वो हमारे स्पिरिचुअल गाइड और मेंटर बनेंगे और साथ साथ हमारे समस्याओं को समाधान देने की भी कोशिश करेंगे। अगर आपके मन में प्रश्न है तो आप बेशक बेझिझक उनसे सवाल कर सकते हैं। आप इस वीडियो के लाइव कमेंट्स पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप अपने कमेंट्स में फीडबैक्स लिख सकते हैं, कोई शाउट आउट है आपका, कोई ऐसी दिल की बात है जो ऐसे ही आप शेयर करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, फेसबुक पर और यूट्यूब दोनों ही जगह पर। मैं आप सबकी तरफ से ब्रह्मा कुमार अमीचंद भाई जी का स्वागत करता हूँ। वेलकम भाई जी आपका।
थैंक यू
भाई जी। हर दिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो हम एक घंटे के प्रोग्राम में नहीं पूरा कर पाते, हर दिन के लिए अगले दिन जितने सवाल हो ही जाते हैं, तो मैं शुरुआत कल के एक सवाल से करना चाहूंगा। कल का सवाल थोड़ा सेंसिटिव सा मुद्दा था जो हम आज न्यूज़पेपर्स में भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ा। सही मायनों में हमारे लाइफ में हीरोज कौन है, वो कौन है जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, इस पर चर्चा हो रही है। और ये भी देखने को मिला है कि सुसाइड एक ऐसी समस्या है जो सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष को या किसी एक तबके को, पढ़े लिखे को, अनपढ़ को, पैसे वाले को या गरीब को ये देखते हुए परेशान कर रही है। तो जहां पर एक प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है, हम अपने आप को सशक्त बनाने की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग इस पर आज चिंतन कर रहे हैं और आज नेशनल मीडिया में भी इस पर बहुत, आज के दिन खासकर, बहुत बातचीत हुई है। तो जिन्हें हम हीरो समझते हैं, क्या हमारे हमारे लाइफ में ऐसे इंस्पिरेशनल फिगर्स की जरूरत होती है, या फिर हम अपने आप को बिना किसी इंस्पिरेशनल फिगर के भी खुद के लाइफ को इंस्पिरेशनल बना सकते हैं, ये सवाल पूछना चाहता हूं।
देखिए कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारी अपनी लाइफ को हम इस ढंग से बनाएं जो हमें किसी बाहर की जरूरत ना पड़े। मगर अगर किसी वक्त बाहर की भी कोई चीज हमें मिल जाती है और उनके अनुभव होते हैं, उनकी पर्सनैलिटीज होती हैं, जीवन के अनुभव होते हैं, तो अनुभवों से लाभ तो लेना ही चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर ये है कि हम उनके अनुभवों से लाभ जरूर लेवें, मगर ऐसा ना हो कि हम उनको सरेंडर कर जाएं या उनके अपनी बुद्धि को उनके अनुसार चलाने की कोशिश करें, उनका इतना प्रभाव ना हो कि हम अपनी बुद्धि का जो यूज करना बंद कर देवें। तो मैं ऐसा मानता हूं कि बैलेंस रख करके चलने में बड़ा फायदा होता है कि हमें अपना महना अपने के साथ साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि मेरे साथ कुछ और शक्ति भी तो काम कर रही है ना, जिसको हम परम शक्ति मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, पिता मानते हैं, तो वो उसका भी तो मुझे साथ है और सहयोग है, तो उसको भी साथ रखते रहें। और उसके साथ साथ अगर कोई और पर्सनैलिटी है, कोई और व्यक्तित्व है और उसके अच्छे अनुभव हैं, तो मैं कहता हूँ मैं उसके में भी हमें वेलकम करना चाहिए और अच्छी चीज़ों को हम लेते ही हैं। हमारे जितने सीनियर्स भी हमारे इंस्टीट्यूशंस में, वो भी हमें बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं, कई चीज़ें उन्होंने जी अनुभव किए हैं और हमारे लिए उन्होंने बड़ा मार्गदर्शक किया है, इसलिए बैलेंस एटीट्यूड रखना चाहिए, मेरी ऐसा विश्वास।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं पहला प्रश्न पूछना चाहता हूं जो YouTube से हमारे पास लाइव आ रहा है। YouTube पर हमारे साथ निकिता जी हैं, निकिता परवानी, और ये सवाल पूछते हैं। आई होल्ड ब्लेसिंग्स फॉर एवरीवन। दे आर हु वांटेड माय लाइट टू टर्न डार्क इंस्टेड ऑफ एडमिटिंग देयर ओन मिस्टेक। सम पीपल ऑलवेज सी माय फॉल्ट्स। व्हाट कुड बी माय रोल इन दिस। निकिता जी कहते हैं, मैं सभी के लिए अच्छी भावनाएं और दुआएं देना चाहती हूं, बट मगर होता यह है कि कुछ लोग मेरी गलतियों को पकड़े रखते हैं। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए?
निकिता जी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो गलतियों को पकड़ता है, नुकसान उसका होता है। आपका क्या नुकसान है? कोई आपकी गलतियों को पकड़ रहा है तो आपको आपको क्या हो रहा है? आपको कुछ सोचना नहीं चाहिए। आप अपने जो आपका पाथ है, जो ठीक रास्ता है, उस पर आप चलते रहें। मैंने देखा है कि आगे जब आप लोग बढ़ते हैं तो कई लोग थोड़ा सा रास्ते में रुकावटें आती ही हैं। इसको भी हम थोड़ा सा अपने रास्ते में एक छोटी सी रुकावट समझे और नथिंग एल्स। मेरा ऐसा मानना है कि जो गलती, जिसकी आदत है, जिसका संस्कार है, जिसका स्वभाव है, वो उसी ढंग से आज हर व्यक्ति अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार काम कर रहा है। हम दूसरों की अगर करेक्शन ज्यादा सोचेंगे तो हमें कठिनाई पैदा होगी। हम अपनी करेक्शन ठीक रखें। हम ठीक हैं, कोई कुछ भी कहे तो कुछ नहीं है। मुझे एक इंस्टेंस याद आ रहा है अव्यक्त बाबा का। बाबा उन दिनों में हम बाबा से बात कर लेते थे, गुलजार दादी के तन में बाबा आया था। तो एक भाई ने पूछा, बाबा मैं तो ठीक हूँ पर मुझे दूसरे ठीक नहीं समझते हैं। तो हम भी सुन रहे थे बाबा क्या जवाब देता है। तो बाबा ने कहा, बच्चे अगर तू ठीक है ना तो बस, मैं तुझे ठीक समझ रहा हूँ, दूसरे से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए यू गो अहेड। ये ना सोचो कि दूसरे आपके लिए क्या सोचते हैं। अगर आज वो आपके लिए ठीक नहीं भी सोच रहे हैं, कल वो ठीक सोचने लग जाएंगे। इसलिए दूसरों की व्यूज को बहुत ज्यादा हम इम्पोर्टेंस ना देंगे। हम अगर ठीक हैं, अपने रास्ते पर ठीक चलते हैं, तो मेरा ख्याल है कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।
बहुत ही अच्छी बात जी। ये जो बात आप कह रहे थे कि हमें अपने आप को ठीक रखने की जरूरत है, हम अक्सर अपने ठीक होने या न होने के मेजरमेंट को दूसरों से लेते हैं कि अगर वो अप्रूव करते हैं तो हाँ हम सही हैं, दूसरे लोग इस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं तो तब जाके हमें लगता है कि हाँ हम ठीक है। बट क्या ये तरीका सही है कि हम कैसे जाने कि हाँ हम सही चल रहे हैं? अक्सर हमें ये आदत है कि जैसे ये लॉकडाउन में बहुत ज्यादा लोगों को महसूस करने को मिला कि अक्सर हम चीजें अपने फ्रेंड्स से वेरीफाई करते थे, अपने कॉलीग से जिनके साथ हमारी अच्छी बनती है उनसे वेरीफाई करते थे कि अच्छा ये ठीक कर रहा हूं मैं या नहीं कर रही हूं, ये पूछा जाता था। बट आजकल सिर्फ फैमिली मेंबर्स से वेरीफाई करने जितना लोग नहीं सोचते, क्योंकि अक्सर ये सुनने को मिल रहा था कि फैमिली मेंबर्स हमारी बहुत टीका टिप्पणी करते हैं। तो ऐसे टाइम पर जहां हमारे पास वेरीफाई करने के लिए कोई है नहीं, तो हम अपने आप को कैसे चेक करें कि हाँ भाई हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं?
मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत बड़ी शक्ति हर एक के पास है, वो है साइलेंस की शक्ति। बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे आप देखिए कि पानी में हलचल अगर होती है तो नीचे की चीज दिखाई नहीं देती है, और अगर पानी स्टेबल हो जाता है तो आप नीचे की चीज आराम से देख सकते हैं। मेरा ऐसा व्यक्तिगत अनुभव है कि आप बहुत शांति में बैठ जाएं, मन को शांत करें कुछ समय के लिए, और जो आप कुछ बात अंदर सोच रहे हैं या जिसका आपको डिसीजन चाहिए, आपको अपने आप ही राइट डिसीजन, बिल्कुल राइट डिसीजन आपको टच करेगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इसलिए कहीं आप इधर उधर भटकने की, भागने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हमें अपनी कॉन्शियस, मेरी अपनी कॉन्शियस के अंदर बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें हैं जो मुझे गाइड कर सकती है। इसलिए हमें अपनी कॉन्शियस को जो है उसको अपना गाइड बनाए हैं, और मेरा ख्याल है उससे जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरों के हम अगर विचार लेंगे तो अपने अनुभव के आधार पर कई चीजें हमें गाइड करेंगे, कई दफा वो अच्छी भी हो सकती है, कई दफा थोड़ी कठिनाई भी पैदा कर सकती है। इसलिए भले हम थोड़ा बहुत किसी से कोई बात सुनते हैं, सुन लेते हैं, अच्छी बात है, मगर सबसे ज्यादा ये है कि हम अगर ये अभ्यास बनाएं कि बहुत शांति में बैठे, डीप साइलेंस जिसे हम कहते हैं, जब वो स्टेज डीप साइलेंस की बनती है तो आपको अपने आप ही टचिंग आएगी कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग।
जी, इससे ही मिलता जुलता एक सवाल है जो अर्चना दुबे जी पूछते हैं। हालांकि आपने साइलेंस के प्रैक्टिस के बारे में ये चीज को मैं जोड़ना चाहता हूँ, ये कल के ही एक सवाल से है। कुछ लोग साइलेंस को बहुत ही डिसकम्फर्टिंग महसूस करते हैं, साइलेंस में बैठने से उनके दूसरे ख्याल ज्यादा चलने लगते हैं, ऐसा भी लोग महसूस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेडिटेटर्स नहीं है जो यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको ध्यान का या फिर मेडिटेशन का या साइलेंस में बैठने का अभ्यास नहीं है, तो ये थोड़ा डिसकम्फर्टिंग और अनकम्फर्टेबल हो सकता है। तो ऐसे में लोग क्या करें कि साइलेंस की जो प्रैक्टिस की आप बात कर रहे हैं उसको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, कैसे उस चीज को अनकम्फर्टेबल ना हो ऐसा बना सकते हैं?
देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कोई भी हो, मगर मेरा ऐसा विश्वास है कि इतनी समझ तो उसको जरूर है कि ये मैं जिसे मैं कह रहा हूं, ये पांच तत्वों का शरीर है जिसको मेरा नाम है, लोग मुझे जानते हैं, मगर मैं इस पांच तत्वों के शरीर एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, स्पिरिट हूं। ये मेरा ख्याल है हर कोई जरूर मानेगा, क्योंकि जब किसी की शरीर छोड़ता है, डेथ होती है, तो कोई भी हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, वो सब हाथ जोड़ के कहते हैं कि भगवान इसकी आत्मा को शांति देना, और उसको कहते भी है कि आत्मा चली गई, ये चला गया, चल बसा। उसका मैंने इतना तो उनका विश्वास है कि ये दो चीज का खेल है, एक आत्मा एक शरीर मिलकर के जीव आत्मा। और वो अगर आत्मा को अगर अंदर में थोड़ा भी हम विश्वास रखेंगे तो फिर आत्मा के बारे में इतना जानना बहुत जरूरी है कि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। और मैं ऐसे मानता हूं, जैसे आप कहते हैं शायद हो सकता है डिस्कम्फर्ट जैसे आप कहते हैं, मुझे तो ऐसे लगता है कि कोई भी हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, जैसे लोग भी आप देखेंगे ना, कोई बात भी होगी तो कहते मुझे शांत रहने दो, मुझे चुप रहने दो, डिस्टर्बेंस ना करो। डिस्टर्बेंस किसी को अच्छी नहीं लगती, अशांति किसी को अच्छी नहीं लगती, तो मैं तो ऐसे मानता हूं कि शांति तो अच्छी लगती है। अच्छा, उसमें हमें ऐसा कुछ नहीं है, साइलेंस का भाव ये है कि अंदर हम अपने अंदर को देखें, अंदर देखने लग जाए, ऐसा नहीं कुछ नहीं करना है। साइलेंस का मेरा भाव ये नहीं कि नील स्टेज नो थॉट, नहीं नो, हमें थॉट वो करने उस समय पर अपने बारे में, अपने सेल्फ को जैसे अंदर देखना है, मैं कौन हूं, कैसे मेरे विचार चल रहे हैं, अपने अंदर को देखें हम, जिसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। वो इंट्रोस्पेक्शन अगर हम देखेंगे तो मन को कुछ काम मिल जाएगा और मन जो है और बाहर की चीजों से, व्यर्थ की चीजों से फ्री हो जाएगा। तो जैसे मन व्यर्थ की चीजों से फ्री होगा तो उसमें समर्थता की शक्ति बढ़ेगी, राइट जजमेंट जिसे हम कहते हैं, राइट जजमेंट हमें बताएगी हमें क्या करना और क्या नहीं करना।
जी, बहुत ही अच्छी बात है, आपने कहा कि साइलेंस डिस्कम्फर्टिंग नहीं होना चाहिए, आप पूरा चुप होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव सोचने के बारे में कह रहे हैं, और उसके लिए फिजिकल साइलेंस आप लेते हैं और पॉजिटिव थॉट्स को माइंड के अंदर लाते हैं तो वो आसानी से हो सकता है। एक और सवाल मैं लेना चाहता हूं जो हमारे साथ पूछ रहे हैं, और ये प्रश्न मेरे ख्याल में फेसबुक से आया है, और फेसबुक से ये प्रश्न पूछते हैं अर्चना दुबे जी। अर्चना जी का प्रश्न है, जिन्हें हेल्थ इश्यू बहुत होते हैं तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? एज हेल्थ इश्यू अगर बहुत होते हैं तो पॉजिटिविटी नहीं हो पाती है, प्लीज हेल्प भाई जी, ऐसा कहते हैं। अक्सर ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे लोग, ये पैंडेमिक का सिचुएशन भी चल रहा है, जिनके एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस हैं उनको बोला गया है कि आप ज्यादा ख्याल रखें, अगर आपको पहले से कोई बीमारियां हैं तो आप घर के बाहर नहीं जाएं, तो उनको पॉजिटिविटी मेंटेन करने में तो दिक्कत आएगी ही, एग्जिस्टिंग हेल्थ सिचुएशन से उसकी वजह से एक फियर भी है कि भाई आप बाहर नहीं जा सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू किया है, तो जिनको एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं वो लोग अपने आप को कैसे पॉजिटिव बनाए रखें?
देखिए अर्चना जी, शरीर अलग है, मन अलग है। शरीर में कठिनाई है, मेरे में क्या कठिनाई है? मेरी सोच पॉजिटिव तो मैं रख सकता हूं ना। वाई कैन नॉट चेंज द इवेंट्स, वन कैन नॉट चेंज द इवेंट्स बट वन कैन चेंज हिज एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द इवेंट्स। इसका क्या मायना है? मायना ये है कि आप हालात नहीं बदल सकते। जो आपको शरीर के कष्ट है, कई दफा वो ठीक है, टाइम लगेगा, मेडिकल एडवाइस है, ट्रीटमेंट है, वो चीज अलग है, वो चलेगा। मगर आप जो है, आप कौन है? आप तो ईश्वरीय संतान है। आप क्या कहते हो रोज भगवान के सामने खड़े होकर? क्या कहते हो तुम? मात पिता हम बालक तेरे, तमेव माता च पिता। क्या आपका विश्वास है कि आप ईश्वरीय संतान हैं? कोई भी बीके नॉन बीके कोई भी एनीबॉडी, अगर आप ईश्वरीय संतान हैं तो ईश्वर पिता की संतान है ना, तो फिर आपका रक्षक कौन है? हर पिता अपने बच्चे का ध्यान तो रखता ही है। अपने विश्वास में देखिए, आपके विश्वास अगर ठीक हो जाएंगे तो आई थिंक बहुत सी कठिनाइयां ठीक हो जाएंगी। विश्वास ठीक हो चुके, ट्रस्ट, ये जो आज आपके अंदर जो कमी आई हुई है, मैं ऐसे समझता हूं कि ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की और ईश्वर के विश्वास में कुछ थोड़ी सी कमी दिखाई देती है, इसके कारण ऐसी सोच चलती है। नहीं तो क्या है, शरीर है, कठिनाइयां आ रही हैं, कोई बात नहीं, ये भी कोई हमारे हिसाब किताब है, कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मन तो मेरा है ना, मैं शरीर से अलग हूं और मैं ईश्वरीय संतान हूं और मैं उसके संतान होने के नाते से सर्व प्राप्ति स्वरूप हूं ही हूं, मुझे उसकी वो चीजें मिल रही हैं ईश्वर की तरफ से। ये सोच मुझे बहुत फायदा दे सकती है
जी। एक और प्रश्न जो मैं लेना चाहता हूँ वो भी फेसबुक से ही है। हमारे दोस्त पूछते हैं कि अगर हम अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे आप ये बात कह रहे थे कि मैं अपने आप को याद दिलाऊं कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, हम सभी उस ऑलमाइटी के बच्चे हैं, ये कभी लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस नहीं रहा है हमको? जैसे हमने सुना है, हमने पूजा तो की है, हम मंदिरों में जाते हैं, कहते भी हैं, बट उस रिलेशनशिप को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। वो लगता है कि हाँ चलो ये प्रार्थना है, करनी है, तो हमें माता पिता इतना कर देते हैं, बट उस चीज की रियल फीलिंग अगर हमको ले आनी है, सही में वो रिलेशनशिप एक्सपीरियंस करना है, तो कोई कैसे कर सकता है उस चीज को?
नहीं, मैं ऐसे कहता हूं, आप देखिए, अगर एक बच्चा अपने पेरेंट्स से छोटेपन से ही वो अलग हो गया, काफी समय तक अलग रहा, मगर जब वो बच्चा पेरेंट्स से मिलेगा दोबारा तो पेरेंट्स को कैसे फीलिंग आएगी और बच्चे को कैसे फीलिंग आएगी? अपनेपन की फीलिंग आएगी ना उसको, कि ये मेरे पिताजी हैं, मेरा परिवार है, लाइक दिस। बेशक इतनी देर तक वो फीलिंग नहीं रही, वो दूर रहा अपने बाप से। ऐसे ही हम लोग हैं, अगर हम लोग ईश्वर की उस अनुभूति से काफी समय दूर रहे हैं तो यह है, तो रियलिटी तो यही है ना। अगर हम लोगों ने इस चीज को जो रियलिटी है उसके अभ्यास में या उसके अनुभव में नहीं रहे आज तक, ओके नहीं रहे, मगर अब तो रह सकते हैं ना। ये तो रियलिटी है ना कि मैं आत्मा हूं और ईश्वर की संतान हूं। आज तक मैं उस अभ्यास में या उस विश्वास में मैंने नहीं जीवन गुजारा, ओके, मगर अब फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स जस्ट नाउ अब मुझे क्या कठिनाई है? क्या ये गलत बात है कि मैं ईश्वर की संतान हूं? क्या ये सोचना गलत है? क्या ये विश्वास गलत है? ये अपने से बात करके देखिए आप। आज तक आप कट ऑफ रहे हैं, ओके, मगर आप कनेक्ट तो हो सकते हैं ना। कनेक्ट कौन करेगा? आप अपने आप को कनेक्ट, आपके घर की बिजली 2 माह से नहीं चल रही थी, अब बिजली आ गई है, तो फिर क्या होगा? आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि बिजली आ गई है ना, उसको यूज कीजिए। कहिए कि 2 माह क्योंकि डिस्कनेक्ट रही है, अब मुझे अंधेरा अच्छा लगता है, प्रकाश अच्छा नहीं लगता। ऐसा कहेंगे क्या? प्रकाश अच्छा लगता है नहीं, अब डार्कनेस में रह रहे थे, मगर अब तो रोशनी, अब हमारे घर में रोशनी आ गई है। अब ये विश्वास अगर आज से आप पैदा करके देखिए कि हम ईश्वरीय संतान हैं, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मैं जिसे मैं गीत गाता रहता था मैं वही हूँ, ईश्वर मेरा पिता है, सर्व संबंध है, इस विश्वास के साथ आप जिए ना, क्यों नहीं है? अगर आज तक नहीं रहे हैं मगर आज से तो कर सकते हैं ऑनवर्ड। जब आपको पहचान मिली है तो पहचान के अंदर जो चेंज तो आती है ना, फिर मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये पॉसिबल हो सकता है।
जी बहुत ही अच्छी बात आपने कही भाई जी, और ये जो उदाहरण आपने दिए मैं समझता हूँ ये बहुत ही फायदेमंद है। अगला सवाल मैं लेता हूँ, सिया मोटवानी जी का प्रश्न है। सिया पूछते हैं, फेसबुक से सिया हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सिया कहते हैं, ओम शांति भाई जी, I being the daughter-in-law of my family, I am controlled by a lot of people. If I take any decision that I am comfortable with for myself, I can feel the strong negative vibes from people. Hence, there is a constant internal fight inside me that my desires versus their desires. How to deal with such people and keep myself calm and always away from negativity, away from negativity? I was a very light-hearted and jolly person. I feel myself losing on basic nature because of this around them that I feel. तो इनका मुख्य प्रश्न ये है भाई जी, अभी ये किसी के घर में बहू हैं, तो अब नए घर में आए हैं, तो उनके डिजायर्स और परिवार के डिजायर्स और जो लोग उनसे अपेक्षाएं करते हैं, इसके बीच में हमेशा एक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल महसूस करते हैं। और वो कहते हैं कि पहले मैं बहुत ही जॉली पर्सन थी, बट धीरे धीरे ये डिमांड्स और ये कंपटीशन जो चल रहा है, अंदर का द्वंद्व है, इसके चलते मेरा ओरिजिनल नेचर चेंज होता जा रहा है, ऐसा मैं महसूस करती हूँ, तो मैं कैसे अपने आप को हैंडल करूं, पूछते हैं।
मैं ऐसा मानता हूं कि देखिए, सिचुएशंस बदलने पर एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। हम जैसे पहले अनमैरिड थे, मैरिड होने के बाद हमें कुछ चीज तो लानी ही पड़ेगी। उस चीज तो अगर हम समझे कि नहीं मैं वही मेरा, देखिए बचपन से जब युवा आते हैं तब भी चेंज आती है, युवा से जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तब भी चेंज आती है। चेंज तो चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर हम कहते हैं, इसमें चेंज में कोई कठिनाई नहीं है, मगर कठिनाई मेरी सोच में है कि मैंने वही जिंदगी गुजारनी है जो मैरिज से पहले वाली थी, कि क्या मैरिज के बाद वाली जिंदगी गुजारनी है। उस वक्त मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे, उनकी सोच कुछ और ढंग की मेरे लिए थी, और अब मेरे साथ जो है दूसरे पेरेंट्स है, वो भी पेरेंट्स है, मगर वो जो एनवायरमेंट मुझे मिला है, मुझे उसके तरफ भी एडजस्टमेंट की जरूरत है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि दिस इज अपना अपने अंदर चेंज लाने की जरूरत है। और जैसे हम अपने पेरेंट्स को लव एंड अफेक्शन करते हैं, प्यार करते हैं, इनके साथ भी हमें उस ढंग से चलना चाहिए। लव बिगेट्स लव। अगर आप किसी को श्रेय प्यार देते हैं, आप मन में उनके लिए अच्छे भाव पैदा करते हैं, तो क्या उसकी रिटर्न नहीं आएगी? मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मगर अगर हम अपने ही सिस्टम में, अपने ही विजडम में, अपने ही थॉट्स में अपने को ही महत्व देते हैं, और दूसरे को हम समझते हैं इनका क्या है, बिल्कुल ये तो कुछ नहीं है, तो ये सोच जो होती है वो कठिनाई पैदा करती है। मगर अगर हम हमारी की विशेषताएं देखें, वो जो लोग नए मेरे साथ जुड़े हैं उनके अंदर भी कोई गुड थिंग्स हैं, उनके अंदर भी कुछ अच्छी क्वालिटीज हैं, आप उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए। अगर उनकी तरफ आप उनके बारे में अच्छा सोचने लगेंगे तो वो आपके बारे में अच्छा सोचने लग जाएंगे। क्वेश्चन ये है, अगर हम उनके बारे में उनकी जो नेगेटिविटी है, थोड़ी बहुत और चीजें कमियां पेशियां, वो ज्यादा हमारे ध्यान पर रहती हैं और उनकी विशेषताएं ध्यान पर ही नहीं रहती हैं। उनके भी कुछ हालात है, उनके भी कुछ थॉट सिस्टम है, उनकी भी कुछ कठिनाइयां हैं, आप उनको शेयर कीजिए, उनके साथ देखिए आप बैठ करके, जस्ट आप सहयोगी बनकर के रहिए। एक परिवार के अंदर, नए परिवार के अंदर आप आए हैं, तो मैं तो ऐसे समझता हूं कि नहीं, पहले देना फिर लेना, हमारा मैं ऐसा मानता हूं। जिस व्यक्ति के अंदर देने की अगर समर्थता है, अपनी सहयोग, अपनी भावनाएं, अपने थॉट्स दूसरों के लिए अच्छे देने की भावना है, तो एक दिन उसके भी अच्छे थॉट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। मेरा ऐसा विश्वास है कि ये चेंज डेफिनेटली चेंज हो सकती है, वन कैन चेंज, मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि एक हर एक में इतनी शक्ति है कि वो सर्कमस्टांसेस के अनुसार एडजस्ट करता ही है, वैसे भी करता है। आप देखिए, मैंने तो देखा है कि हम समय पर अपने आप को कितना एडजस्ट कर सकती है, मगर अगर आप करना चाहें तो वेयर देयर इज विल देयर इज वे। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं, आज लाखों परिवार जो हैं, हमारी बहनें जब दूसरे घरों में आ जाती हैं तो बड़े खुशी से चल रही, अच्छाई से चल रही, क्या कि उनके अंदर सिर्फ जस्ट एडजस्टमेंट एंड पावर ऑफ गिविंग, दूसरों को रिगार्ड देना, रिस्पेक्ट देना, अरे क्या चीज है अंदर में आप देखिए। तो मैं तो इससे समझता हूँ कि ये चेंज बहुत इजीली हो सकती
है जी। और बहुत ही अच्छी बात आपने कही भाई जी, जो आप ये कह रहे थे कि हम स्वयं को बदलें, और हम कोशिश यही कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों में कि अगर हम खुद बदलते हैं, अगर हम खुद उस बदलाव का स्वरूप बनते हैं, तो बाहर भी हम वो चेंजेस देख सकते हैं। हमारे जो दोस्त जो हाल ही में जुड़े हैं, जो सवाल पूछना चाहते हैं या कोई बात कहना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में आप अपना कमेंट या प्रश्न डाल सकते हैं। उनमें से कुछ प्रश्नों को हम अमित चंद भाई जी से पूछेंगे, जो आज के हमारे स्पिरिचुअल गाइड हैं, और वो हमारे प्रश्नों का जवाब भी दे रहे हैं और हमारी बातों को सुन भी रहे हैं। YouTube पर और Facebook पर, दोनों ही जगह पर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कोई बात शेयर करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है और आप ये चीज कर सकते हैं। अगला प्रश्न YouTube से मैं ले रहा हूँ। अगला प्रश्न है अर्चना खन्ना जी का। अर्चना जी पूछते हैं, भाई जी मुझे कई बार लोगों में गलत बातें, बुरी बातें कही हैं, जबकि मैं वहां गलत भी नहीं थी, तो उनकी बातें बार बार याद आते रहते हैं और मेरा मन बड़ा दुखी होता है, तो बहुत परेशानी होती है और मैं इससे बाहर आना चाहती हूं, इसके लिए वो मदद चाहते हैं भाई जी।
देखिए कि जो बीत गया सो बीत गया, अगर हम पास्ट को नहीं भूल सकते तो प्रेजेंट भी हमारा अच्छा नहीं रहेगा। अगर किसी ने कुछ चीज कही है जो नहीं कहनी चाहिए थी, आप उसको नहीं बदल सकते। इसलिए हम कहते हैं पास्ट को फुल स्टॉप लगाओ, बीती को बीती समझो और बीती को वो खत्म कर दो बिल्कुल के। इसलिए अगर आप उन चीजों को बार बार मेमोरी में लाएंगे, जो कठिनाइयां, जो अच्छी चीजें नहीं है, जैसा चिंतन होगा वैसे आपकी स्थिति होगी। अगर आपका चिंतन होगा कि उन लोगों ने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने ऐसे कहा, तो पास्ट को तो हम कहते हैं पास्ट इज डेड, भूल जाओ, खत्म कर दो, एक नया जीवन शुरू करो। और उनके प्रति भी जिन्होंने भी कुछ ऐसी बातें कही आपके लिए, भूल जाओ, फॉरगिव एंड फॉरगेट, बस ये इस प्रिंसिपल अगर आप अपना सकते हैं, एक नई जिंदगी जियो, उनके लिए भी आप भूल जाओ, अच्छा माफ कर दो उनको, खत्म बस। अगर ये आप करेंगे तो हो सकता है कि आपके अंदर एक नई चेंज आ जाए, क्योंकि जो किसी ने कहा है, आप देखो जो कुछ कहा गया वो कहा गया, बस वापस नहीं आ सकता वो। मगर अब ये है कि आप अगर अपने अंदर चेंज लाएंगे तो वो नहीं कहेंगे आप। जिन्होंने आपके लिए अच्छा कहा है, गलत कहा है, वो अच्छा भी कह सकते हैं, यही तो वंडरफुल चीज है। हम तो यही कहते हैं कि जो व्यक्ति के बारे में किसी ने कुछ गलत कहा है, वही व्यक्ति उसके बारे में अच्छा कहना शुरू कर देवे, यही तो पुरुषार्थ है, यही तो हमारे अंदर चेंज है। और उसका तरीका यही है कि मैं उस जिसने कुछ कहा है गलत, मैं उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दूं। अब करके देखिए, आप भूल जाइए कि उसने कुछ आपको कहा है, आप भूल जाएंगे और वो आपके लिए अच्छा सोचना शुरू कर देंगे, करके आप देखिए।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही था जी, कि चीजों को भूलने के लिए भी अभी हमें प्रयास करना पड़ता है। अक्सर जब हम देखते हैं, हम ये कहते हैं कि हम आसानी से चीजें भूल जाते हैं, हम कह देते हैं अरे मैं भूल गया, मगर जब कोई कड़वी बात होती है उस चीज को हमें भूलने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। ये बहुत ही कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है, लोग ये चीज को कहते तो हैं, बट ऐसा क्यों होता है कि हम अक्सर अच्छी चीजें भूल जाते हैं और बुरी चीजें याद रखने लग जाते हैं?
उसका कारण ये है कि जो हमारी नेचर है ना, नेचर, वो बड़ी अच्छी नेचर है। हमें अच्छी चीजें ही पसंद है, गलत चीजें पसंद नहीं है। इसलिए वो चीज गलत जो होती है वो बार बार हमें क्योंकि नहीं ठीक लगती है इसलिए वो सामने आ जाती है, क्योंकि हमारी ओरिजिनल नेचर प्योर एंड पॉजिटिव है। हमारी आत्मा की ओरिजिनल नेचर प्योर एंड पॉजिटिव है। नेगेटिव चीज जो है वो हमें अच्छी नहीं लगती। मगर अब ये है कि अपने भविष्य को अगर अपने ठीक करना है तो भविष्य को अगर ठीक करना है, पास्ट को जो हो गया सो हो गया, अगर हम नेगेटिव चीजें ही स्मृति में लाते रहेंगे, हमारी कॉन्शियस में नेगेटिव चीजें आती रहेंगी, तो हमारा हमारे क्या स्टेज क्या रहेगी, फिर नेगेटिव रहेगी। फिर हम तो कहते हैं बी चेंज, आपका टॉपिक है बी चेंज, क्या मैंने कि अपने को बदलो। जो चीज आप अगर अगर आप बदलना चाहते हो, अच्छा अनुभव करना चाहते हो, तो आप कड़वे कड़वे टेस्ट को क्यों याद करते हो? और मैं आपको बताऊं, कड़वे टेस्ट के साथ कुछ अच्छे टेस्ट भी जरूर होते हैं। मगर हमारा ये मेरा नेचर होता है कि हम अच्छे टेस्ट को भूल जाते हैं और कड़वे टेस्ट को याद करते हैं। नहीं, हमें अब ये सोचना है कि मेरा भविष्य किस में है, अच्छे सोचने में है या गलत सोचने में है, तो बदलना किसको है, कौन बदलेगा? इसलिए मैंने बदलना है और अपने लिए अपनी अच्छाई के लिए बदलना है तो मुझे बदलना ही पड़ेगा फिर। इसलिए मुझे उन चीजों को भुलाना है और उसके बहुत से तरीके हैं कि हम बदल सकते। अच्छी चीजें जो कैसे हम अपने क्या हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी कम है, नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव ज्यादा है, हमारे अंदर क्या चीज की कमी है, हमारे अंदर जो अंदर शक्ति चाहिए पावर ऑफ चेंज जिसे हम कहते हैं वो नहीं है, और क्या चीज है, पावर ऑफ चेंज की कमी है। पावर ऑफ चेंज जो है अगर हमारे अंदर अब कुछ पुरुषार्थ और करने लगेंगे, जैसे हम ब्रह्मा कुमारी इसमें राजयोग का अभ्यास कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं, वो अगर जीवन में आने लगेगी तो हमारा अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, मनोबल है, विल पावर है, पावर टू चेंज की पावर जो है वो बढ़ेगी ना। हमारे अंदर कमी हमारे अंदर है, वो तो चीज नेगेटिव है, वो नेगेटिव आ रही है, पर हम अपने अंदर उसको नहीं एक्सेप्ट करें, बस उसको भूल जाएं, इफेक्ट ना होने दें आप अपने ऊपर। अभी आप देखो कोई भी बीमारी आती है, कोई भी आप क्या करते हैं, डॉक्टर आपको क्या देता है, डॉक्टर जो आपको दवाई देता है वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है, अंदर के आपके सिस्टम को इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करता है, आपकी वो चीज नेगेटिव जो शरीर के अंदर है खत्म हो जाती है। आप भी कुछ ऐसा काम भी तो करो ना, आप ऐसा काम करो जिससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़े। अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी थॉट सिस्टम में बढ़ेगी तो अच्छा ध्यान कीजिए, अच्छा संग कीजिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, आपकी अपनी अंदर की शक्ति जब बढ़ेगी तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो खत्म कब होगी, अपने आप ही खत्म हो जाएगी। बुराई का नेगेटिविटी का कोई आधार नहीं होता है, उसके पांव नहीं होते हैं, कुछ नहीं है, नथिंग है, आपकी सोच उसको बढ़ा रही है। जब आप सोचना बंद कर देंगे नेगेटिव, वो खत्म हो जाएगी, वायरस खत्म हो जाएगा, बस नथिंग एल्स।
बहुत ही सिंपल शब्दों में आपने इस चीज को समझा दिया कि अगर हमें कोई चीज बुरी चीज याद आ रही है, इसका मतलब ये है कि हम उसको बदलना चाहते हैं, और क्योंकि हमारा इनेट नेचर गुडनेस का है, पॉजिटिविटी का है, अच्छाई का है, प्योरिटी का है, और उस पर अगर हम प्रयास करें, अगर हम स्वयं उस बदलाव का स्वरूप बने, तो बहुत अच्छे से हम चीजों को हैंडल कर सकते हैं और वो चीज हमारे से निकल जाती है। अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूँ। अगला सवाल भी फेसबुक से हमारे साथ है, परमिंदर कौर जी एक संजीदा सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर ने बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ दी है, सभी के लिए गॉड का गिफ्ट होता है लाइफ, मगर लोग क्यों इसको एंड कर देते हैं, लाइफ में सुसाइड कर लेते हैं, और ये ऐसा क्यों होता है, ये सवाल पूछते हैं। मैं समझता हूँ आज दिन भर में बहुत चर्चा हुई है कि सिने जगत के एक मशहूर सितारे ने सुसाइड कमिट किया, तो उसकी वजह से ये प्रश्न नेशनल कॉन्वर्जेशन का भी हिस्सा बना है कि ऐसा क्यों हो जाता है कि लोग अपने लाइफ को एंड करने के बारे में सोचने लग जाते हैं।
मैं से ऐसे मानता हूं कि हम हर एक के अंदर पुण्य का खाता भी है और कुछ दूसरा खाता भी है, कुछ जमा का खाता है और कुछ दूसरा खाता है, हमें दिखाई तो देता नहीं। हम तो जब किसी व्यक्ति को देखते हैं हम तो जानते नहीं है, कि उसके डिपॉजिट कितने हैं और उसके विड्रॉल्स कितने हैं। अब जिसके अकाउंट भी जीरो हो गया समझोगे तो क्या करोगे आप? उसके अंदर कोई ऐसी स्टेज चीज आ जाती है, हमें नहीं पता है, मगर उसके थॉट सिस्टम में ऐसी कोई नेगेटिव चीज आ जाती है, क्योंकि पॉजिटिव नहीं है साथ में। अगर उसके अंदर पॉजिटिव कोई थॉट्स आई भी है सुसाइड करने की या कोई चीज भी आई भी है, मगर अगर उसका अकाउंट दूसरा स्ट्रांग है तो उसको रुक जाएगा, वो नहीं करेगा, बदल जाएगा। मगर अगर उसका पुण्य का खाता जो है या कोई चीजें जो है नहीं है अंदर में, तो कोई चीज अभी आई और उसका ऐसे, क्योंकि उसकी फिजिकल बॉडी हमें अच्छी लग रही है, मेंटल स्टेज का तो हमें पता ही नहीं है किसी का। जिसका मेंटल स्टेज वीक है किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। इसलिए माइंड इमोशनल एटीट्यूड जिसे हम कहते हैं उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। आज वायरस के अंदर सबसे बड़ी चीज है इमोशनल एटीट्यूड। अगर इमोशनल एटीट्यूड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए कुछ करना पड़ता है ना। मैंने देखा है कि इंसान जिंदगी भर अपने इमोशनल एटीट्यूड को बेटर बनाने के लिए कुछ नहीं करता। अपनी फिजिकल एजुकेशन है, मनी है और चीजों के लिए सब कुछ टाइम देता है, मगर कभी ऐसी स्टेज को जिंदगी में आ जाए जबकि हालात कुछ ऐसे आ जाए, सर्कमस्टांसेस आ जाए, चैलेंजेस ऐसे आ जाए, तो उसको फेस करने के लिए मेरे पास क्या चीज है? जब मनी भी काम नहीं करती, शरीर भी काम नहीं करता, मेंटल एटीट्यूड वो उसके लिए इंसान कुछ करता ही नहीं, कुछ नहीं करता। मैंने देखा है अपने माइंड को पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, इसलिए हमें ऐसे अचानक ऐसे लगता है कि ये क्या हो गया, क्या हो गया। मगर अंदर राज ये है कि कोई भी थॉट्स आया उसको नेगेटिव, मगर उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास दूसरी एनर्जी नहीं थी। बेसिक चीज ये है, वो चीज एनर्जी ना होने के कारण वो फिर सडन चांस दे देता है। मैं अगर आपको छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ, 2 मिनट की स्टोरी है। एक बार एक व्यक्ति ये मैरिन ड्राइव में की बात है, ये स्टोरी है। एक गाड़ी, बड़ी अच्छी गाड़ी से एक व्यक्ति उतरा और उतर करके वो सेठ जी अपना सागर की तरफ आगे बढ़ने लगा। वहां पर एक कोई संत बैठा था, उसने उसके गले में लाठी डाल के पीछे खींचा, इधर आ, तू मरने जा रहा है? कहता हाँ मैं मरने जा रहा हूं। क्यों मरने जा रहा है? मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया, मेरे परिवार, मेरी बहू, मेरा फलाना, मेरा कोई घर में रिस्पेक्ट नहीं है, मैं सुनता नहीं, मैं तो आज मरूंगा। उसने कहा अच्छा तो एक बात कर, तू मेरी एक दिन के लिए बात मान ले, कल तू यहां आ जाना, मैं तुझे धक्का दे दूंगा। एक बात कर, तेरे पुण्य का खाता खत्म हो गया है, तू अभी आज पुण्य का खाता जमा कर। कहता क्या करूं? कहता देख तेरे पास कोई पैसा है? कहता है। उससे आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम की कुल्फी लेके आ, और ये कुत्ता बैठा है ना इसको खिला, मुंह में डाल। जैसे उसने आइसक्रीम कुत्ते को डाली, उसके पांव चाटने लगा उस सेठ के। घर में गया, नौकरानी सामने आई, सेठ जी मेरे बेटी की शादी है। उसने कहा अच्छा? उसने पैसा निकाला, उसको दे दिया और रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए, इतना शुक्रिया करने लगी। सेठ जी दूसरे दिन कहता है कि मैं नहीं मरना चाहता, क्या चीज है ये बताइए मुझे। पुण्य का खाता इतना जमा हो गया जो आप देखिए कि उसका मरने का जो संकल्प था वो खत्म हो गया। इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारे अंदर जो पुण्य की पूंजी है वो हम उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। जी रहे हैं सब लोग, बड़े फर्स्ट क्लास बंगलों में, कोठी कारों में रह रहे हैं, मगर श्रेष्ठ कर्म कितना कर रहे हैं, किसी के लिए कितना कर रहे हैं, किसकी दुआएं कितनी इकट्ठी कर रहे हैं। वो खाता जब खत्म हो जाता है, बैलेंस नील हो जाता है, फिर वन कुछ भी, किसी से भी कुछ भी हरकत हो सकती है।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही भाई जी की साइकोलॉजिस्ट भी ये बात कहते हैं, उस मोमेंट के लिए आपको कुछ और करने की जरूरत है। उस मोमेंट पे अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप सुसाइडल फील कर रहे हैं, तो किसी के साथ शेयर करें, उस मोमेंट पे कुछ पॉजिटिव सोचें। और जैसे आपने कहा कि उस मोमेंट के बारे में आपने जो स्टोरी सुनाई कि कुछ पुण्य का काम करना, कुछ अच्छे करने के बारे में अगर हम सोच लेते हैं तो बहुत कुछ फायदा हो सकता है। बहुत सारे दोस्त हमारे हैं, जैसा आप कह रहे थे कि हम अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करने के लिए, अपने आप को अंदर से बलवान बनाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। आपने शुरुआत में साइलेंस के प्रैक्टिस के बारे में बताया, मेडिटेशन के बारे में भी हम हर दिन सुनते आए हैं। बहुत सारे दोस्त मेडिटेशन करने भी लगे हैं ये बदलाव के इस वक्त में। बहुत सारे लोग फिजिकल फिटनेस पे, योगा पे, मेडिटेशन पे ध्यान देने लगे हैं। और हमारे उन दोस्तों के लिए जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, साथ साथ करना चाहते हैं, तो फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर, ब्रह्मा कुमारीज के ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स पर आप हर दिन शाम को 5:30 बजे 15 मिनट का ऑनलाइन गाइडेड मेडिटेशन इंग्लिश में कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन के लिए नए हैं तो आपके लिए भी फायदेमंद है, और जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए हर दिन का एक पॉजिटिव प्रैक्टिस रहेगा, जहां पर आप हर दिन कुछ पॉजिटिव इनपुट अपने अंदर भरेंगे मेडिटेशन के थ्रू। आपको करना कुछ नहीं है, आप हर दिन शाम को 5:30 बजे 15 मिनट के लिए ऑनलाइन आइए ब्रह्मा कुमारीज के फेसबुक पेज पर, facebook.com/ब्रह्मा कुमारीज पर और youtube.com/ब्रह्मा कुमारीज पर। भारत के समय अनुसार इंडियन लोकल टाइम के हिसाब से आप शाम को 5:30 बजे मेडिटेशन कर सकते हैं, और ये गाइडेड प्रोग्राम इंग्लिश में होगा। पिछले कई दिनों से हमारे कुछ दोस्तों ने ये भी हमें फीडबैक्स दिए हैं कि प्रोग्राम हिंदी में होता है। जो लोग इंटरनेशनली इस प्रोग्राम को देखना चाहते हैं या फिर इंटरनेशनली क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं या फिर जो दक्षिण भारत के लोग हैं जो जिनकी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, उन सभी लोगों ने इंग्लिश में प्रोग्राम की डिमांड की थी कि इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर सेशन हो। तो इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर सेशन अगले हफ्ते से आप हर संडे, एवरी संडे यू वुड हैव एन इंग्लिश क्वेश्चन आंसर सेशन ऑन लीड द चेन, वेयर वी विल हैव स्पिरिचुअल मास्टर्स हु वुड आंसर टू आवर क्वेश्चंस इन इंग्लिश। So you could always tune to the same time at 6 p.m. on Sunday evening starting next week, which also happens to be the International Yoga Day from the 21st of June. अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूँ। अमीर चंद भाई जी आज हमारे साथ हमारे मास्टर ऑफ मेडिटेशन के रूप में बैठे हैं। उनके लिए अगला प्रश्न फेसबुक से आ रहा है। फेसबुक से पूनम अरोरा जी ये सवाल पूछती हैं। पूनम जी का सवाल है कि मैं अपने टीनेज बॉय को आध्यात्म की तरफ कैसे कनेक्ट करूं, टीनेजर्स को स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट कैसे दिलाया जाए, ऐसे पूनम जी का सवाल है।
मेरा ऐसा अनुभव है कि जितना बच्चा छोटा होता है उतना बच्चा माँ बाप के साथ जहां भी जाओगे वो चल पड़ता है और बात भी मानता है। अर्ली स्टेज में अगर हमने बच्चे का ध्यान नहीं रखा, जब वो 4-5 साल बच्चे ऑनवर्ड जो था, तब थोड़ी सी कठिनाई आती है। जब बच्चे की उम्र बड़ी हो जाती है, उसके दोस्त हैं, मित्र हैं, उसके अपने थॉट्स हैं, कई चीजें हैं, उस मौके पर फिर बहुत ही हमें सॉफ्ट तरीके से कुछ ऐसी युक्ति से, वो भी मैंने देखा है कि उनको जैसे कि ये नहीं कि कोई नॉलेज और योग उसकी तरफ हम ज्यादा जोर देवें, उनको एक रिलेशनशिप में लाने की कोशिश करें। हमारे सेंटर्स पर बहनें हैं, बहुत स्नेही है, छोटी छोटी बहनें हैं, तो उनको हम उनके साथ रिलेशन मेंटेन करवाएं पहले किसी भी तरीके से, और जब वो रिलेशन में आ जाएगा फिर नॉलेज और योग की बात लेटर ऑन आप कीजिए। उनको जैसे कि एक अच्छा माहौल मिले सेंटर पर आने पर, उनको जो बहनें हमारी छोटी छोटी हैं उनको बहुत प्यार से बात करें, तो उनको कंपनी उनको लगेगी, अच्छा लगेगा। फिर जैसे ही उनको कंपनी अच्छी लगेगी तो फिर आप देखेंगे कि फिर ज्ञान योग तो अपने आप आएगा ही आएगा, मगर आप इसको अलग तरीके से हैंडल कीजिए उसको किसी तरीके से। मैंने देखा है कि एक बहन ने मुझे अनुभव सुनाया था, उसने उसका बेटे का भी अनुभव सुनाया था, तो कहती थी कि उसको मैं ये अगर मैं कहूंगी सेंटर पर जाके ज्ञान योग के लिए तो मना करता था, तो मैं कहती थी बीच बीच कहती थी बेटा मेरा एक काम कर दे, जरा ये सब्जी फल है ना बाबा का भोग लगना है, आप जरा सेंटर पर देख के आ, बस इतना कहती थी। और बहनों को इशारा किया हुआ था कि जब भी वो आएगा तो उसको आप बहुत प्यार से बाबा का घर का प्रसाद खिलाओ, टोली खिलाओ, स्नेह से बात करो, ज्ञान जो की बात ना ज्यादा करो, रिलेशनशिप में ले आओ, तो उसको फिर लगेगा कि मैं वहां जाऊं, मन करे उसका सेंटर पर आने का, बहनों से बात बैठने का, तब ये पॉसिबल हो सकता है कि उसके अंदर ये जो स्पिरिचुअलिटी की जो आप कहना चाहते हो कि बेटा आपका इस तरफ आए, ये पॉसिबल है, मगर इसके लिए थोड़ा सा अलग तरीके से आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और ये पॉसिबल हो सकता है रिलेशनशिप में आ जाए वो। किसी भी तरीके से। एक बार मुझे याद है कि हमारे एक अम्बाला के सरदार जी हैं, वो मधुबन में अपनी दो बेटियों को लेकर के चले गए, बहुत समय पहले की बात है, और वो दोनों बेटियों को सारा टाइम भी आबू घुमाते रहते थे, कभी नक्की लेक में कभी कहां पर। तो किसी ने कहा आपका भी टाइम बर्बाद हो रहा है और आपकी बेटियां आपको भी नहीं ज्ञान जो करने दे रही हैं। उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा, आई लव इट। वो कहता है आज मैं उनकी बात मान रहा हूं, कल को मेरी बात भी मानेगी। देखिए क्या चीज है, आज उनका इंटरेस्ट और चीजों में है, मैं वो सहयोग दे रहा हूं, और कल को वो, और वो लेटर ऑन बहुत फर्क पड़ गया। देखिए तो इसलिए देर आर सर्टेन सिस्टम्स कि हमें जैसे कि उनकी बात को वैल्यू भी देनी चाहिए, तो फिर अगर हम उनकी बात को वैल्यू देंगे तो हो सकता है वो हमारी बात को भी वैल्यू देंगे, हो सकता है, पॉसिबल।
बहुत ही अच्छी बात है, और मैं ये सोचता हूँ कि टीनेजर्स के साथ डील करने में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सी चीज है कि हम बच्चों को, टीनेजर्स को तो हम बच्चे नहीं समझते हैं, उनको हम फ्रेंड्स की तरह देखें, हम उनकी बात माने। जैसा आपने कहा अभी, उनके डिमांड्स क्या हैं, वो क्या चीजें पसंद करते हैं, वैसा करें। और दूसरी चीज, रिलेशनशिप में ले आए, उनके साथ स्नेह का संबंध हो, कहीं अच्छा कनेक्शन बने, उनका फ्रेंडशिप का संबंध बने, जहां पर वो चीजों को शेयर कर सके, ऐसा वातावरण बने, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत सारे हमारे दोस्त फीडबैक भी दे रहे हैं, वो इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। वो भ्रातृ जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया भी कर रहे हैं, रितिका सेठी जी आपका धन्यवाद कहते हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्तों के कमेंट्स हम स्क्रीन पे दिखाते हैं। आपके थैंक यू के मैसेजेस को मैं पढ़ने की कोशिश नहीं करता, मैं ज्यादा से ज्यादा सवाल लेने की कोशिश करता हूँ, बट आप सभी जो एनकरेजिंग कमेंट्स देते हैं उन सभी चीजों के लिए मैं धन्यवाद जरूर प्रस्तुत करना चाहूंगा, और आपके कमेंट्स को स्क्रीन पे समय समय पर दिखाया जरूर जाएगा। अगले सवाल की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। टीनेजर्स के बाद जो बात ये की जाती है उसे तो बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, आजकल बच्चे छोटी उम्र में ही बहुत सारी चीजें समझने लगते हैं, तो उसके लिए हर एक को उसी आइडेंटिटी के हिसाब से, उनकी बातों को मानने के हिसाब से करना चाहिए। अगला सवाल यूट्यूब से सुनीता जी का है, सुनीत छबरा नाम है इनका। सुनीत जी का प्रश्न है यूट्यूब पर, हाउ कैन वी नो दैट पर्सन इज पासिंग थ्रू अ बैड फेज, हाउ कैन वी बी हेल्पफुल टू सच पीपल। एक व्यक्ति बुरे दौर से गुजर रहा है, वो बिना बताए वो तो शेयर नहीं कर रहा है, मगर हम उनकी इस बात को समझ सके, वो हम बिना पूछे बिना जाने कैसे समझ सकते हैं, और कैसे हम ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, ऐसा पूछते हैं।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पर मैं कहता हूं जो जिनको हम जान रहे हैं कि बैड सिचुएशन में, उनकी मदद तो करें। अगर हम अंदर ये ढूंढने लगे कि कौन आदमी दुखी है तो हम किस तरफ बढ़ेंगे, हम दुख की तरफ बढ़ेंगे। कि मैं कहता हूँ इसकी इसकी जाने की जरूरत नहीं है, जो दुखी नजर आ रहे हैं ना उनकी सेवा करें हम, मगर जो ठीक नजर आ रहे हैं उनके बारे में जाने की कोशिश करें कि इनको कष्ट क्या है, और फिर उसकी मदद करने की सोचे। मेरा ख्याल है कि उसको थोड़ा सा एक साइड में रख दे, और जो हमें कष्ट में नजर आ रहे हैं कम से कम उनकी तो मदद करें, मेरा ख्याल है वो बेटर होगा, बजाय इसके के क्योंकि अगर एक व्यक्ति ठीक ठाक नजर आ रहा है, हमें तो ठीक नजर आ रहा है, मगर फिर भी हम जानना चाहते हैं कि इसको दुख क्या है, तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा जो है टेढ़ा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जो पेशेंट हैं उनकी ट्रीटमेंट तो करें हम, मगर जो हमें ठीक नजर आ रहा है हम ये जानने की कोशिश करें कि इसको भी बीमारी कौन सी है, तो मेरा ख्याल है उसको थोड़ा सा छोड़ देवे। जो व्यक्ति बता रहे हैं कि हम बीमार हैं और हमें तकलीफ है उनकी मदद करें, मैं ऐसा सोचता हूं।
बहुत ही अच्छी बात है भाई जी, ये क्यूरियोसिटी होना अच्छी चीज है, मगर हमारे पास मदद के लिए बहुत सारे लोगों की लाइन लगी होती है, अक्सर हम उन चीजों को नहीं देखते हैं जिनको हमारी आवश्यकता है, जो हमारे आंखों के सामने नजर आ रहे हैं, जिनको हम मदद कर सकते हैं, जिनको देखकर लगता है कि हाँ ये परेशान है या फिर ये दुखी है, उनके हेल्प के बारे में हमें सोचना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। लगभग 50 मिनट हो रहे हैं और मेरे पास लगभग 5 मिनट का ही वक्त है, और मैं 2-3 प्रश्नों को मिलाकर कोलेट करने की कोशिश करता हूं। एक ये चीज जो पॉजिटिविटी के बारे में आपने बोली कि हम अपने मन को सशक्त बनाने के बारे में ध्यान नहीं देते हैं और उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, हम जीवन में ऐसे कठिन परिस्थितियां जब आती हैं तब जाके हम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि जब आग लग जाती है तो तब हम कुआं खोदने की कोशिश करते हैं, तो ये दिक्कत होती है, तो पहले से हम उसकी तैयारी कैसे करें, ये एक पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न अर्पिता जे भट्टाचार्य हैं, ये फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं, वो पूछते हैं हम टेंशन एनवायरमेंट में बहुत दिन रहते रहते बुरे होते जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि टेंशन जैसा वातावरण जो अभी लॉकडाउन में चलता आया है, इसमें टेंशन की वजह से हम बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं। घर में हम अपने आप को कूल कैसे रखें, अपने आप को ठंडा कैसे बनाए रखें, ये सवाल है। और आखिरी सवाल जो मैं इसके साथ क्लब कर रहा हूँ, ये जो भय का भी माहौल है बाहर बहुत सारे लोगों के साथ, प्रीति जी यूट्यूब पर ये सवाल पूछती हैं कि हम इस भय से भी कैसे बाहर आए।
इन सब प्रश्नों का उत्तर एक ही है, वो ये है कि हम थोड़ा समय और चीजों में ये जो वातावरण बना हुआ है इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन में ना जाए, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, बहुत सी चीजों में अपना टाइम इसमें दें, तो जो थॉट जैसा हम सोचेंगे वैसे हमारी स्टेज बनेगी। अगर हम नेगेटिव चीजों का और जो चीजें हैं कठिनाइयां पैदा कर रही उसका जितना ज्यादा चिंतन करेंगे तो हमारे थॉट सिस्टम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, इसलिए हम ठीक है, मगर ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर हमें घर में रहना पड़ रहा है कि अगर हम कुछ और कर सकते हैं आपकी जो आज तक नहीं हमने किया, समय की कमी होने के कारण हम लोगों ने कई चीजों को इग्नोर किया है, और वो चीज ये है कि हम अपने बारे में अपने को सशक्त बनाने के बारे में एक स्पिरिचुअलिटी का जो रास्ता है, अध्यात्म शक्ति का रास्ता है, अपने को जाने। आज लोग ये तो कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर में हमारा विश्वास है, मगर मैं कहता हूं कि वो जानते बिल्कुल नहीं, और उससे शक्ति लेने की विधि तो बिल्कुल ही नहीं जानते। आप बताइए क्या होगा। केवल हम ईश्वर को मानने से कुछ नहीं होने वाला है, ईश्वर को जानना जरूरी है, ईश्वर के साथ जुड़ना जरूरी है, और उससे कितनी प्राप्तियां होती है आप देखिए। आप तो कहेंगे कि ये हम तो ऐसे आज देखिए 3 मास लगभग होने वाले हैं, अगर हमारे से अपना व्यक्तिगत अनुभव सुनो तो हम कहेंगे ये जो चांस है, ड्रामा अनुसार कहेंगे, हमें इतना अच्छा चांस मिला है कि जो हम अपने बारे में अपने को शक्त बनाने के बारे में हमारे पास टाइम है। जो लोग कहते थे कि मेरे पास मरने का टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कहता हूं अब तो आपने तो कहा था टाइम नहीं, अब तो टाइम मिला है ना आपको, तो कुछ अच्छा कीजिए, कुछ और चीजें कीजिए जो आप नहीं कर सके आज तक, तो आप अपने लिए अपने परिवार के लिए एक मिसाल बनिए, एक अच्छा वातावरण क्रिएट कीजिए, और वो आध्यात्मिक का वातावरण है। अगर आप उसके अंदर जो वो ईश्वर से जो चीज मिल सकती है वो आपने आज तक उस पर विश्वास है मगर प्राप्ति नहीं है जीवन में, मैं ऐसा अच्छी तरह मानता हूं, तो ये मौका ऐसा है हम उससे उस विधि को जाने, उस सिस्टम को अंडरस्टैंड करें, उस अभ्यास की ओर ध्यान देवे, और ईश्वर से जो हमारा खजाना है, जो सर्व प्राप्तियों का सोर्स है, उससे लेवे तो जीवन कितना अच्छा बन सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है।
जी भाई जी, ये बात जो आपने कही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो समय मिला है इसको हम पॉजिटिवली अगर कुछ यूज करना चाहते हैं, अगर अपने आप को स्ट्रेंथन करने के बारे में अगर हम सोचते हैं, तो इससे अच्छा मौका हमारे पास नहीं है। बहुत सारे लोग फिटनेस पे, योगा पे, मेडिटेशन पे बहुत सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा सोर्स है जो आपको अंदर से स्ट्रेंथन करता है, डिवाइन के साथ आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करता है, उस रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है, तो इस मौके को यूज करना चाहिए और इससे हमें बेनिफिट लेकर इन सारी चीजों को एड्रेस करने की कोशिश की जा सकती है। बहुत सारे दोस्तों ने आज सवाल पूछे हैं, बहुत सारे दोस्तों ने आज कमेंट्स लिखे, फीडबैक लिखे, थैंक यू के मैसेजेस कहे, अदरवाइज भी बहुत सारे शाउट आउट दिए, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। फेसबुक पर और यूट्यूब पर और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस जो आए हैं वो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विभा कपानी जी, थैंक यू फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन, ये बताने के लिए कि हम अपने लाइफ को कैसे जी सकते हैं, ये आपने बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सतनाम सिंह वेरी नाइस आंसर्स कहते हैं, यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सतनाम आपका। मैं सारे मैसेजेस को पढ़ने की कोशिश करूंगा तो शायद बहुत ज्यादा समय चला जाएगा, मगर आप वीडियो की स्क्रीन पर थैंक यू के मैसेजेस देख सकते हैं। आप सभी के फीडबैक्स में से कुछ चुनकर यहाँ पर बताने की कोशिश की जाएगी। समय हो रहा है तो इसके लिए मैं आगे प्रश्न नहीं ले पाऊंगा, जिनके प्रश्न मैं नहीं ले पाया उनके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मगर आज भाई जी हमारे साथ आए, अमीरचंद भाई जी के साथ आज हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के आंसर्स लिए, हमारे लाइफ के लिए गाइडेंसेस लिए, स्पिरिचुअलिटी को सिंप्लीफाइड और प्रैक्टिकल तरीके से कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में जाना। आप सभी की तरफ से जो हमारे दोस्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सभी की तरफ से मैं अमीरचंद भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू सो मच अमीरचंद भाई जी, आज हम आप हमारे साथ जुड़े। अब मैं भाई जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अमीरचंद भाई जी अब हमारे साथ मेडिटेशन करें और मेडिटेशन कराएं। जैसे आप हर दिन जानते हैं हमारे मास्टर्स ऑफ मेडिटेशन हमारे साथ बैठते हैं तो उनके साथ हमें 5 मिनट मेडिटेशन करने का मौका मिलता है, तो मैं अभी भाई जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिरी के 5 मिनट हम आपके सानिध्य में मेडिटेशन करें और आप हमें मेडिटेशन कराएं भी। अमीरचंद भाई जी,
ओम शांति। सबसे पहले अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करें, सब तरफ से अपने संकल्प को अपने विचारों को समेट लें और ऐसा महसूस करें कि ये शरीर 5 तत्वों का शरीर, इसका मैं आधार लेकर के सृष्टि रंग मंच पर अपना पाठ बजा रहा हूं। मैं आत्मा शुद्ध और शांत स्वरूप है मेरा, मेरा आदि अनादि स्वरूप बहुत ही शुद्ध और शांत है। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की अविनाशी संतान हूं, जो शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं, भंडार हैं सभी गुणों और शक्तियों के। मैं आत्मा उसकी अमर संतान हूं और मैं इस सृष्टि रंगमंच पर इस 5 तत्वों से पार जो अखंड ब्रह्म लोक है, शांति धाम है, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, वहां से मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए आई हूं। इसलिए हर समय ये स्मृति में रहता है कि मैं पाठधारी हूं, मैं यहां पर पाठ बजाने के लिए मुझे ये शरीर और देह के संबंध मिले हैं, मगर मेरा सच्चा पिता परमात्मा वो निराकार शिव है, सर्व संबंध मेरे उसके साथ है। और अब समय है घर लौटने का, सदा स्मृति में रहता है कि यहाँ के हिसाब किताब पूरी कर कर्मातीत स्टेज को प्राप्त करके मुझे अपने घर लौटना है। ये स्मृति सदा रहती है, पुराना हिसाब किताब चुकता करना है, नया कोई नहीं बनाना है। उसके स्नेह और प्यार में बस बैठ करके उसे सारी शक्तियां जो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है उसे मैं प्राप्त करता हूँ और हो रही है। मुझे वो मुझे शक्ति दे रहा है और मेरी आत्मा को पुनः सर्वगुण संपन्न बना रहा है। ये स्मृति रहती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।